दीदी, आज आप हमें डिनर पर बाहर लेकर जाएंगी, और वो भी उसी रेस्टोरेंट में जहां आप आहाना दी के साथ गई थी। हाँ बाबा, ले चलूंगी। अब तो मेरी जान खाना बंद करो, कब से मेरे पीछे पड़ी हो। राधिका ने जरा खींचते हुए कहा और जल्दी जल्दी अपना काम समेटने लगी, पर अर्पिता मैडम अब भी वहीं डटी खड़ी रहीं। दीदी, पक्का आप उसी रेस्टोरेंट लेकर जाएंगी ना? आपने वादा किया था कि मुझे और पापा को वहां डिनर पर लेकर चलेंगी। अर्पिता की ये बात सुनकर राधिका पल भर को ठहर गई। बीते 4 दिनों से माधा से बात नहीं की थी उसने, जाने उससे भाग रही थी या अपने जज्बातों और एहसासों को छुपाने की कोशिश कर रही थी। पर अब उसी के रेस्टोरेंट जाना मतलब उससे आमना सामना होना, जिसके लिए वो बिल्कुल तैयार नहीं थी। राधिका को अपने ख्यालों में उलझा देखकर अप्पू अपनी कमर पर दोनों हाथ रखे उसे मुंह फुलाए घूरने लगी। दीदी, अब आप अपने वादे से मुकर नहीं सकती, आपको मुझे वहीं लेकर जाना होगा। मैंने आहाना दी से रेस्टोरेंट का नाम भी पूछ लिया था। अगर आप ये सोचकर मुझे उल्लू बनाकर कहीं और ले जाने का सोच रही हैं कि मुझे कौन सा पता चलेगा, तो भूल जाइए। मुझे उसी रेस्टोरेंट में जाना है तो उसी रेस्टोरेंट में जाना है, और आज मेरा बर्थडे है तो मेरी ही बात मानी जाएगी। अगर आप मुझे कहीं और लेकर गई, अपना वादा तोड़ा, तो फिर मैं आपसे नाराज भी हो जाऊंगी और भूख हड़ताल करूंगी आपके इस अन्याय के खिलाफ। कोई कहेगा कि ये लड़की लॉ पढ़ रही है? बिल्कुल बच्चों जैसी जिद कर रही थी और राधिका को धमका भी रही थी। ना चाहते हुए भी राधिका को उसकी जिद के आगे झुकना ही पड़ा और उसने चिढ़ते हुए उसकी बात मान ली। हाँ मेरी माँ, ले चलूंगी तुझे वहीं, नहीं बनाऊंगी तुझे उल्लू। अब रहम खा मुझ पर और कुछ देर बिना किसी डिस्टर्बेंस के आराम से काम करने दे, वरना फिर लेट होगा मुझसे ना कहना। राधिका ने झुंझलाते हुए उसको फटकार लगाई और अर्पिता बेशर्मी से मुस्कुरा दी। मेरा काम तो हो गया, अब मैं तो चली। राधिका ने नाराजगी से उसे घूरा तो अर्पिता खिलखिलाते हुए वहां से बंदरिया जैसे उछलते कूदते हुए भाग गई। उसके जाते ही राधिका के माथे पर चिंता की लकीरें उभर आईं और वो कुछ परेशान सी हो गई। जबकि कमरे से बाहर निकलते ही अर्पिता की लबों पर रहस्यमयी मुस्कान उभर आई और आंखें जुगनुओं सी चमक उठी। उसके नटखट मन में कोई तो शरारत जन्म ले चुकी थी जिससे राधिका बिल्कुल ही अनजान थी। खैर, अप्पू की जिद पर आशुतोष जी और उसके संग राधिका माधव के रेस्टोरेंट आ गई थी, पर अंदर जाने में झिझक रही थी और नर्वसनेस उसके चेहरे पर साफ जाहिर थी। अंदर आकर बैठने के बाद भी उसकी निगाहें बड़ी ही बेचैनी से यहां वहां भटक रही थीं। दीदी, किसी को ढूंढ रही हैं आप? अप्पू ने आंखें बड़ी बड़ी करते हुए राधिका से सवाल किया, जिसे सुनकर राधिका हड़बड़ा गई। नहीं, हाँ वो वेटर को ढूंढ रही थी। राधिका की जुबान लड़खड़ा गई, दिल की चोरी अल्फाजों में नजर आई। बिखरे अल्फाजों के दरमियान बड़ी मुश्किल से उसने खुद को संभाला, टेबल पर रखे ग्लास को उठाकर लबों से लगा लिया और माथे पर आए पसीने को हथेली से पोंछने लगी। शैतान अप्पू के लबों पर कुटिल मुस्कान उभर आई। इतने में राधिका का फोन बजा और वो तुरंत ही उठकर बाहर चली आई। कुछ ही मिनट बाद लौटी तो जो उसने देखा उसके तो जैसे होश ही उड़ गए। उसे गए चंद मिनट ही हुए थे और उतने में ही उनका पूरा टेबल अलग अलग डिशेस से भरा था, जिनमें से कुछ उसकी पसंद का था, कुछ अप्पू की पसंद का था, तो कुछ आशुतोष जी की उम्र के हिसाब से कम मिर्च मसाला और तेल का खाना था। ये सब कहाँ से आया? मैंने तो कुछ भी ऑर्डर नहीं किया था, राधिका ने चौंकते हुए सवाल किया। अप्पू ने पनीर टिक्का अपनी प्लेट में डाली और उसे खाने में मसरूफ होकर बेफिक्री भरे अंदाज में जवाब दिया। मैंने ऑर्डर कर लिया दी, अब आप भी बैठकर खाना खाइए। देखिए तो कितनी टेस्टी टेस्टी चीज़ें हैं यहाँ, और टेस्टी भी बहुत हैं। अप्पू का चेहरा खुशी से जगमगा रहा था, पर राधिका अब भी फटी आंखों से अचंभित सी टेबल पर लगी डिशेस को देख रही थी। पर अप्पू, इतना सब क्यों मंगवाया तुमने? ये सब खत्म कैसे होगा? अप्पू मैडम, जो पूरी तल्लीनता के साथ अपने पापी पेट को भरने और लालची जीभ को चटकारे देने में व्यस्त थीं, बार बार होती डिस्टर्बेंस पर खींचते हुए खाना छोड़कर उसकी ओर पलटी। क्या यार दीदी, आप मुझे चैन से खाना क्यों नहीं देती? अभी खाना शुरू किया नहीं और ख़त्म करने की चिंता आपको पहले सताने लगी। मैंने पूछ लिया है वेटर से, बचा हुआ खाना पैक हो जाएगा, और मेरा मन था आज अच्छे से आपकी जेब काटने का, इसलिए मुझे जो जो खाना था मैंने आपकी एब्सेंस का फ़ायदा उठाकर झटपट सब कुछ मंगवा लिया। अब अपनी सवालों की पोटली को बंद करो, खुद भी खाना एंजॉय करो और मुझे भी करने दो। देखो तो आपके वजह से पापा भी नहीं खा रहे। राधिका ने चौंकते हुए सामने देखा तो सच में आशुतोष जी खाना छोड़कर परेशान से उसे ही देख रहे थे। राधिका झेपते हुए मुस्कुराई और अब कुछ बोले बिना चुपचाप खाना खाने लगी। पहली बाइट लेते ही उसके जहन में कुछ आया और उसकी आंखों की पुतलियां फैल गईं। उसने धीरे धीरे सब कुछ टेस्ट किया और जैसे जैसे टेस्ट करती जा रही थी उसके चेहरे के भाव बदलते जा रहे थे। इन बीते महीनों में उसे माधव के हाथों के स्वाद की अच्छे से पहचान हो गई थी। वो एक बार में ही पहचान गई कि यहाँ मौजूद हर डिश खुद माधव ने बनाई है, और यही उसकी हैरानी की वजह थी, क्योंकि उसने 2 शेफ रखे हुए थे। मेन डिश ही खुद बनाता था, बाकी सब वही संभालते थे, या कभी कोई एक्सपेरिमेंट करना होता तब किसी डिश को छेड़ता। राधिका अब इन्हीं ख्यालों में उलझी थी कि एक वेल्वेट का खूबसूरत सा केक उनके टेबल के बीचों बीच सज गया। राधिका की हैरानी भरी निगाहें बगल में बैठी अप्पू की ओर उठ गईं। अब ये भी तुमने मंगवाया है? सारा रेस्टोरेंट ही मंगवा लिया होता, ये तो कम है। राधिका का ताना सुनकर अप्पू, जो खाने में मग्न थी, उसने नाराजगी भरी निगाहें उसकी ओर घुमाई और गालों को फुलाते हुए तुनकते हुए बोली, ये मैंने ऑर्डर नहीं किया है,
ये इन हाउस है। एक जानी पहचानी सी सर्द आवाज राधिका के कानों से टकराई और उसने हड़बड़ाते हुए आवाज की दिशा में नजरें घुमाई। सामने मुस्कुराता हुआ माधव खड़ा था। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? माधव को अपने सामने देखते ही राधिका चौंकते हुए ये सवाल पूछ बैठी, जिसका जवाब माधव ने बड़ी ही सहजता से दे दिया। ये मेरा ही रेस्टोरेंट है राधिका, अगर मैं यहाँ नहीं रहूंगा तो और कहाँ रहूंगा? राधिका अपने किए सवाल पर ही झेम गई और सक पकाते हुए उसने उस पर से नजरें फेर ली। नहीं, वो मेरे कहने का मतलब था कि आपके पास वेटर है तो सही, फिर खुद सर्व करने क्यों आए हैं? रेस्टोरेंट का मालिक कस्टमर को खुद से आकर खाना सर्व करे, ये तो मैंने पहले कहीं नहीं देखा। राधिका ने बात घुमाते हुए अपनी झेप मिटाई, पर अगले ही पल माधव ने जो जवाब दिया उसने उसकी धड़कनों को बढ़ा दिया। आप खास है मेरे लिए। राधिका ने घबराकर निगाहें माधव की ओर उठाई। इतने में माधव ने बड़ी ही चालाकी से अपनी बात का रुख मोड़ दिया। आपसे पुरानी जान पहचान है मेरी, तो यहाँ आने वाले बाकी कस्टमर्स से स्पेशल हुई आप, और स्पेशल कस्टमर्स को स्पेशल ट्रीटमेंट भी दिया जाता है, कम से कम हमारे यहाँ तो यही होता है। माधव एक बार फिर मुस्कुराया और राधिका ने सकपकाते हुए अपना चेहरा घुमा लिया। बेटा आप भी बैठिए हमारे साथ। आशुतोष जी जो अब तक खामोशी बैठे बड़े ही ध्यान से राधिका को देख रहे थे, उन्होंने बड़े ही प्यार से माधव को बैठने कहा। उनके शब्द राधिका के कानों में पड़े तो अचानक ही उसे खांसी आ गई और घबराहट भरी निगाहें आशुतोष जी की ओर घूम गई। राधिका क्या हुआ बेटा, आप ठीक हैं? आशुतोष जी राधिका को लगातार खांसते देखकर कुछ चिंतित से हो गए, जबकि माधव ने तुरंत ही पानी का ग्लास उसकी ओर बढ़ा दिया। राधिका पानी पीजिए। राधिका ने पानी के ग्लास को लबों से लगाया और माधव उसकी पीठ सहलाने लगा। राधिका की खांसी थमी तो उसका ध्यान माधव पर गया और शर्म व संकोच से उसकी पलकें छुक गईं। मैं ठीक हूँ। माधव को भी अब स्थिति का भान हुआ और वो भी कुछ सक पकाते हुए पीछे हट गया। अंकल अभी मुझे काम है तो इजाज़त चाहूंगा, बाद में कभी आपके साथ बैठकर डिनर करने का मौका मिला तो आपके इस ऑफर को जरूर एक्सेप्ट करूंगा।
माधव ने सौम्य सी मुस्कान लबों पर सजाते हुए बड़ी ही विनम्रता से उनके अनुरोध को ठुकराया। एक नज़र अप्पू को देखा, जो लबों पर गहरी मुस्कान सजाए ट्यूबलाइट सी जलती आंखों से उसे ही देख रही थी। माधव और उसके बीच आंखों ही आंखों में कुछ इशारेबाजी हुई, फिर माधव जाने को पलट गया। कुछ कदम आगे बढ़ने के बाद उसने पलटकर पीछे देखा तो राधिका उसे ही देख रही थी। माधव ने अपनी उंगली से अपनी आंख को पोंछा और मुस्कुराया। पहले तो राधिका उसके इस इशारे का मतलब न समझ सकी, पर जब अपनी उंगली से अपनी आंखों को छुआ तो समझ आया कि उसने आंसू पोंछकर मुस्कुराने का इशारा किया है, और अनायास ही राधिका के लबों पर सौम्य सी मुस्कान उभर आई। कुछ देर बाद अपनी फैमिली के साथ डिनर एंजॉय करने के बाद राधिका बिल पे करके पलटी ही थी कि उसका सामना माधव से हो गया, और वो चौंकते हुए एक कदम पीछे हट गया। उसकी हथेली उसने सीने पर चलाई। ओ गॉड, डरा दिया अभी आपने मुझे, ऐसे अचानक कौन सामने आता है? राधिका डर गई थी, जिसके लिए उसने माधव को डांट की लगा दी। माधव चेहरे पर गंभीर भाव लिए उसके सामने खड़ा रहा। राधिका कुछ हुआ है क्या आपको? राधिका उसका सवाल सुनकर पहले तो चौंक गई, फिर अचानक ही उसके मन में कुछ आया और वो हड़बड़ाते हुए बोली, नहीं मुझे क्या होगा, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। अंत में मुस्कुराते हुए उसने विश्वास भी दिलाया कि वो बिल्कुल ठीक है, पर माधव के चेहरे पर अब भी गंभीर भाव मौजूद थे। अगर सब ठीक है तो पिछले चार दिनों से आप मेरी कॉल रिसीव क्यों नहीं कर रही हैं? इग्नोर कर रही हैं क्या मुझे, या मेरी किसी बात पर नाराज़ हैं? नहीं ऐसा तो कुछ नहीं, बस थोड़ा बिजी हूँ, कुछ टेस्ट पेपर्स पेंडिंग हैं, उन्हें ही चेक करने में टाइम निकल जाता है, फिर थकी होती हूँ तो सो जाती हूँ। झूठ बोल रही है, कोई टेस्ट पेपर्स चेक नहीं करती, अकेले रूम में बैठकर जाने क्या सोचकर खुद ही खुद में परेशान होती रहती है। मैं तो पूछ पूछ कर थक गई, पर छोटी हूँ ना, इसी बात का नाजायज़ फ़ायदा उठाती है, डांटकर मुझे चुप करवा देती है। बताइए भला, इतनी क्यूट सी लड़की को कोई डांटता है? और अब क्या मैं छोटी सी बच्ची ही रह गई हूँ जो मुझे कुछ भी नहीं बताती? अचानक आई अप्पू की आवाज़ सुनकर दोनों ही चौंक गए। राधिका अपने झूठ के पकड़े जाने पर कुछ घबरा भी गई, जबकि अप्पू जिस तरह से मुंह बनाए नाराज़गी से राधिका को घूर रही थी, माधव खुद को मुस्कुराने से रोक न सका। नहीं, आप तो बहुत बड़ी हो गई हैं और समझदार भी। अप्पू ने फट से निगाहें माधव की ओर घुमा दी। वही तो मैं भी कहती हूँ कि इतनी बड़ी हो गई हूँ मैं, आज तो पूरे 20 साल की हो गई और इतनी समझदार हूँ, पर दीदी कुछ समझती नहीं, अभी भी मुझे छोटी बच्ची जैसे ट्रीट करती हैं। अब की बार उसने बच्चों जैसे मुंह फुलाए अपनी दीदी की शिकायत माधव से लगा दी थी, और उसके बचपने पर माधव को शिखा याद आ गई। वो इसीलिए क्योंकि आप सबसे छोटी हैं ना? माधव ने तो प्यार से उसे समझाने की कोशिश की, पर खुद को छोटा कहे जाने पर अप्पू बिदक गई। मुझे ना आपसे भी कुछ नहीं कहना, आप भी दीदी की साइड लेते हैं, जा रही हूँ मैं यहाँ से, मुझे तो बच्चा समझकर ये कुछ बताती नहीं, आप तो बड़े हैं तो आप ही पूछ लीजिए कि क्या प्रॉब्लम है इन्हें। अप्पू ने मुंह बनाया और उल्टे पांव वहाँ से वापस चली गई। माधव ने अब अपना ध्यान राधिका पर लगाया, जो उससे नजरें चुराती नजर आ रही थी। राधिका अब सच बताएंगी कि क्या बात है? स्कूल का कुछ स्ट्रेस है, राधिका ने बेचैनी से अपनी हाथ की उंगलियों को आपस में उलझा लिया, पर माधव से निगाहें ना मिला सकी। माधव की नज़र उसके हर जेस्चर पर थी। झूठ नहीं, सच पूछा है मैंने, माधव की सर्द गंभीर आवाज़ राधिका के कानों से टकराई और उसने अपनी आंखों को कस के भींच लिया।
ये देखकर अजीब सी उदासी माधव के चेहरे पर बिखर गई। अगर हमारी इतनी गहरी दोस्ती में भी आप मुझे सच नहीं बता सकती तो रहने दीजिए, जाइए, अंकल इंतजार कर रहे होंगे और आगे से मैं फ़ोन करके आपको परेशान नहीं करूंगा। माधव ने अपनी बात कही और जैसे ही जाने को पलटा, राधिका की व्याकुलता भरी निगाहें उसकी ओर उठ गई। माधव जी, माधव ठहर गया और खामोश निगाहों से उसे ताकने लगा। अंजू से किसी बात पर बहस हो गई, बस उसी की वजह से थोड़ी परेशान हूँ। अब ये मत पूछिएगा कि बात क्या है, मैं बता नहीं पाऊंगी। जाइए राधिका, अंकल और अप्पू आपका इंतजार कर रहे होंगे। माधव का लहजा अब भी सर्द था और चेहरा भावहीन। अपनी बात कहकर वो वहां से जा चुका था, जबकि राधिका बुत बनी थड़ी उसे खुद से दूर जाते देखती रही और मन अजीब सा हो गया। रात गहराने लगी थी। आज राधिका को शिद्दत से माधव के फोन का इंतजार था। जिस तरह वो उससे दूर गया था, उसकी अनकही सी खामोश नाराजगी ने राधिका के मन को बेचैनियों से भर दिया था। चार दिन से उसके कॉल्स को नजरअंदाज करती राधिका आज जब उससे बात करने को बेसब्र थी तो कम वक्त फोन था कि बज ही नहीं रहा था, जिससे राधिका मन ही मन खींचने लगी थी। हद तो तब हो गई जब घड़ी ने रात के 12 बजाए, पर माधव का फोन तो छोड़ो, एक मैसेज तक नहीं आया। अचानक ही राधिका को माधव के फोन न करने वाली बात याद आई और दिल बेचैनियों से भर गया। अंत में दिल के हाथों मजबूर होकर वो खुद ही माधव को फोन लगाने ही वाली थी कि रूम का दरवाजा खुला और हड़बड़ाते हुए राधिका ने फोन टेबल पर रख दिया। टू बी कंटिन्यूड, कौन आया है इस वक्त राधिका के रूम में और क्या सच में माधव राधिका से नाराज हो गया है?